श्लोक नगरार्णव शैलर्तु चंद्राकोर्दय वर्णन ही उद्यान सलिल क्रीड़ा मधुपान रतोत्सव ही। नगर सागर गिरि ऋतु एवं चंद्र और सूर्य के उदय के वर्णनों से तथा उद्यान विहार जल क्रीड़ा मधुपान और रमणोत्सवों से युक्त होता है। उद्दीपन विभाव महाकाव्य के दंडी प्रोक्त वर्ण विषयों का वर्गीकरण प्रकृति सामाजिक आमोद प्रमोद के अवसर अर्थ अर्थात राजनीतिक एवं तीन वर्गों में किया जा सकता है। नगर अर्णव पर्वत ऋतु तथा चंद्र और सूर्य के उदय के वर्णन प्रकृति के अन्य रूपों के वर्णन का उपलक्षक है। चंद्र सूर्य के उदय का वर्णन इनके अस्त का भी उपलक्षक है। प्रकृति वर्णन काव्य में उद्दीपन विभाव के रूप में उपेक्षित होता है। स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर उद्यान में विहार जल क्रीड़ा मधुपान गोष्ठियां तथा प्रेमी युगल के रतोत्सव अर्थात संयोग श्रृंगार और उनके वियोग अर्थात विरह विप्रलम्ब श्रृंगार विविध प्रकार के विवाहोत्सव बालक जन्मोत्सव आदि के वर्णन सामाजिक उत्सव के तथा विविध कलाओं और कामशास्त्र आदि विद्याओं के उपलक्षक हैं। विवाह से विवाहांग स्वयंवर वर्णन बारात कन्या हरण आदि एवं कुमारोदय से बालक के जात कर्म आदि संस्कारों के उत्सव एवं बाल लीलाएँ उपलक्षित हैं। इनका वर्णन भी उद्दीपन विभाव के रूप में उपयुक्त होता है। श्लोक विप्रलम्भर विवाहेश कुमारोदय वर्णन ही मंत्र दूत प्रयाणाजि नायकाभ्युदय रैपि अलंकृतम। वियोगो विवाहों से और राजकुमारों के जन्म तथा उन्नतियों से एवं मंत्रणा दूतों के प्रस्थान चढ़ाइयों युद्धों और नायक की विजयों से भी सुशोभित होता है। राज्यसभाओं में राजनीतिक मसलों पर कर्तव्य के निर्णय के लिए की जाने वाली मंत्रणाएं निर्णित अर्थों के अनुकूल प्रकट और गुप्त दूतों का संप्रेषण श्रवण शत्रु पर विजयार्थ प्रस्थान शत्रु के साथ संग्राम और अंत में नायक की उस पर विजय के या अन्य अभिलषित कन्या आदि की प्राप्ति के वर्णन से नायक के उत्कर्ष की स्थापना अर्थ से संबंध अन्य वर्ण विषयों की भी उपलक्षक है। नायकाभ्युदय से कथा की निर्वहणांत संधियां तथा प्रयाण से संधि विग्रह आदि छह गुण सामदान आदि चार उपाय और कोष दंड आदि शक्तियां तथा राज्य के साथ अंग आदि पदार्थ अभिप्रेत हैं। श्लोक असंक्षिप्त रस भाव निरंतरम सर्गैरनति विस्तीर्ण श्रव्य वृत्ते सुसंधि प्राचुर्येण स्थित रसों और भावों से व्याप्त होता है। श्रवण सुखद छंदों वाले सुश्लिष्ट संधियों से युक्त इन वर्ण विषयों का उपयोग महाकाव्य में सौंदर्य की सृष्टि के लिए ही होना चाहिए अर्थात इनका समावेश यत्ता में और ईदृक्ता में महाकाव्य की कथा प्रयोजन और नायक के अनुरूप होना चाहिए। यह भाव दंडी के अलंकृतम पद से व्यक्त होता है। भरत ने नाटक लक्षण के इस प्रसंग में नाना विभूतियों समृद्ध और विलास आदि गुणों का कथन किया है। दंडी ने उसी का विकास प्रकृति स्थल में किया है। भामह ने केवल अर्थ के विषय बताए हैं, अन्य विषय उनके रिद्धिमत कथन में समाहित हो सकते हैं। अग्निपुराण में विषयों का क्रम अर्थ प्रकृति और काम है। अर्थ और शेष दो विषयों में छंदों का व्यवधान भी है। काम विषयों में विप्रलम्भ विवाह और कुमारोदय नहीं है जबकि दूती और अस्ति स्त्रियों का समावेश किया गया है। चारुत्वाधायक तत्व महाकाव्य में श्रृंगार आदि आठ रस तथा अपूर्णतया व्यंजित रति आदि 49 भाव असंक्षिप्त और निरंतर अनवच्छिन्न समूची कथा में सतत प्रवाहमय रूप में व्याप्त होने चाहिए। महाकाव्य में मानव के मन में नित्य रहने वाले किंतु उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त रति रस आदि आठ भाव आठ सात्विक और 33 व्यभिचारी भाव के संयोग से पूर्णतया अथवा आवश्यकता के अनुसार अपूर्ण तथा अभिव्यक्त होने चाहिए। रस और भाव को एक साथ कहने से रति आदि की पूर्णता मुख्यतः गौणता और पारस्परिक अनुकूलता प्रतिकूलता रस प्रतिपादक शास्त्र के अनुसार अभिप्रेत है। अन्य शोभाकारक तत्व या तो इसके पूर्व अलंकृत शब्द से कहे गए हैं या रस के आगे गौण होने से कहे नहीं है। नाट्यशास्त्र में भी रसों और भावों का ही ग्रहण इस प्रसंग में किया गया। काम और अर्थ से संबंध उद्दीपन विभावों के प्रतिपादन से श्रृंगार और वीर ही महाकाव्य का मुख्य रस अभिष्ट लगता है। इन दोनों में भी काम की प्रस्तुति पहले करने से वीर की अपेक्षा भी रसराज श्रृंगार ही दंडी की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। कोमल वैदर्भ मार्गों को अधिक आदर देने वाले आचार्य के लिए यह उचित ही है। रौद्र भयानक विभत्स हास्य और करुण रस वीर के अंग के रूप में अभिष्ट लगते हैं। भामह ने महाकाव्य को सब रसों से अलग अलग युक्त बताया है। वर्ण विषय के रूप में केवल दूत प्रयाण युद्ध तथा नायकाभ्युदय बताने से सूचित होता है कि इन पृथक रसों में भी भामह वीर रस को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अग्निपुराण में महाकाव्य में वाग्वैदग्ध को प्रधान बताते हुए भी रस को ही जीवित प्राण कहा है। यहाँ काम और अर्थ के विषयों का वर्णन करने से श्रृंगार और वीर ही मुख्यतः अग्निपुराण कार को इष्ट प्रतीत होती है। अवयव महाकाव्य सर्गबंध होता है, यह आदि में ही कहा गया है। कथा के एक अंश का प्रतिपादक पद्य बंध सर्ग होता है। इन सर्ग रूप अवयवों से अवयवी महाकाव्य का निर्माण होता है। दंडी ने महाकाव्य में सर्गों की संख्या नहीं बताई है, किंतु सर्गों की चार विशेषताएं बताई हैं। क अधिक विस्तीर्ण न हो, ख श्रुति सुखदायी छंदों में निबद्ध हो, ग सुघटित संधियों वाले हों, घ सब जगह भिन्न छंद से समाप्त होते हों। भामह ने संभवतः भरत के अनुकरण पर महाकाव्य को मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहण नामक पांच संधियों मुख्य कथा विभागों से युक्त बताया है। महाकाव्य में जब कथा एक व्यापी तत्व है तब उसका सब भेदों अवस्थाओं और अंगों के साथ विकास अनिवार्य है। दंडी ने इस विशेषताओं को सर्गों की विशेषता के द्वारा बताया है, जो सर्गों की सुश्लिष्टता परस्पर संबद्धार्थ और पांच संधियों के सद्भाव दोनों को एक साथ कहलाता है। श्लोक सर्वत्र भिन्न वृत्तांतर रूपेत लोक रंजनम काव्यम कल्पांतर स्थायी जायते सदलंकृति। सब जगह अंत में बदलते छंद वाले मध्यम परिमाण के सर्गों से युक्त लोक का रंजन करने वाला श्रेष्ठ अलंकार से युक्त काव्य दूसरे कल्प में भी टिकने वाला होता है। भामह ने महाकाव्य के या उसके सर्गों के विस्तार परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा है। भरत द्वारा नाटक के अंगों की संख्या निर्धारित करने के अनुकरण पर अग्निपुराणकार ने काव्य को अति विस्तार से रहित कहा है, जिसे बाद के लोगों ने सर्गों की संख्या निर्धारित करके और विकसित किया है। पर नाटक प्रयोग का विषय होने से अधिक लंबा होने पर लोकोद्वेजक या अनभिनेय रह जाएगा, अतः उसकी यत्ता बताना अपेक्षित है। जबकि काव्य का श्रवण या पठन रुक रुक कर किया जाता है, अतः उसकी यत्ता निर्धारित करना न अपेक्षित है और न उचित है। काव्य की भित्ति की विशालता असीमित है, नाटक की सीमित, इसलिए कवि के पास कहने को जितना अधिक होगा काव्य उतना ही विशाल होगा। रामायण महाभारत काव्य इसके प्रमाण है। इतना ही नहीं बल्कि उसके कलेवर में तो बाद में वृद्धि भी लोकसम्मत नहीं है। महाभारत की जय, भारत और महाभारत अवस्थाएं रामायण के प्रथम कांड के कुछ अंशों और संपूर्ण उत्तर कांड की एवं कुमार संभव के कुछ अंश की मौलिकता पर विवाद इस कथन के पोषक हैं। भामह ने महाकाव्य की दंडी के द्वारा अनुक्त निम्न विशेषताएं बताई हैं। उसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग न हो, वह अर्थवान हो, अलंकार से युक्त हो, अधिक व्याख्या सापेक्ष न हो, वैभवमय हो, लोक के स्वभाव से युक्त हो। लोक स्वभाव पर भरत का बहुत बल है। अग्निपुराण में इसके अतिरिक्त निम्न बातें और बताई हैं। भाषा संस्कृत हो, छंदों का सविस्तार विधान किया हो, विभाव से भरपूर हो, सब रीतियों तथा गुणों और विभूषणों से युक्त हो, वाणी की विदग्धता बांकपन लोकोत्तर प्रकार से कहना प्रचुर होते हुए भी केवल उक्त वैचित्र ही न हो, रस की प्रधानता हो, नायक के नाम से प्रसिद्ध हो। महाकाव्य का लक्षण सुव्यवस्थित रूप से बताने के बाद आचार्य दंडी ने महाकाव्य की ही नहीं कवि की किसी प्रकार की तथा किसी भी निबंधन से निबद्ध कृति की दो विशेषताओं पर 19वें श्लोक में शेष तीन पादों में विशेष बल दिया है। काव्य को लोक का रंजन करने वाला और काव्य के शोभा कारक श्रेष्ठ धर्मों से अर्थात सौंदर्य से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार का काव्य कल्पांतर में भी स्थायित्व पाता है, उसकी सार्थकता प्रत्येक युग में रहती है। अर्थात काव्य में रूप आकार आदि संविधान का उतना महत्व नहीं है, सर्वाधिक महत्व तो लोक रंजन कारक सौंदर्य की सृष्टि का है। श्लोक न्यूनमप्यत्र यह कश्चिदंगै काव्यम न वर्जयते यद्युपात्येषु संपत्ति राधायति तद्विदः। यहाँ महाकाव्य के उपर्युक्त अंगों में से कुछ एक अंगों से हीन निकृष्ट अथवा रहित भी काव्य हे नहीं हो जाता यदि आरब्ध में संपन्नता उसके जानकारों को संतुष्ट कर देती है। काव्य के दो विशिष्ट तत्वों को बताने के बाद आचार्य ने महाकाव्य के संदर्भ में उन दो तत्वों का महत्व प्रकृति श्लोक में बताया है। भरत में अन्वय व्यतिरेक से बताया है कि गुण संपदा से युक्त काव्य नाटक में भी यदि कथा संधियों के अंगों से रहित है तो वह काव्य अभिनय के हीन हो जाने के कारण सहृदयों का मनोरंजन नहीं कर पाएगा। भरत का यह कथन सामान्यतया महाकाव्य पर भी लागू समझा जा सकता है। महाकाव्य लक्षण के यदि कुछ अंग लक्ष्य काव्य में न आ पाए तो अंगों की इस न्यूनता से वह काव्य हे हो जाएगा। दंडी ने इस धारणा का खंडन भी प्रकृति श्लोक में किया है। महाकाव्य के लक्षण के प्रसंग में जो अंग बताए हैं वे सब यदि काव्य में पुष्ट न हो पाए या उन्हें स्थान न दिया जा सके तो इससे काव्य हे नहीं हो जाता। अर्थात काव्य में रूप आकार आदि महत्वपूर्ण नहीं होते, वे तो साधन है। सौंदर्य की सृष्टि के द्वारा विज्ञों की आराधना का जो भी अंग कवि ने काव्य में अपनाए हैं उनकी संपत्ति उनका शोभा व निर्वाह यदि काव्य के मर्मज्ञों को प्रसन्न करने में समर्थ है तो वह काव्य हे नहीं हो सकता, अपितु उसके लिए तो श्रुति भगवती ने भी कहा है देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। इसके विपरीत देवस्य पश्य काव्य मद्या ममार सह यह समान। इन अंगों में कथा का स्रोत प्रयोजन रस और नायक ये चार अंग तो काव्य का आधार तत्व है। नायक का स्वरूप काव्य के प्रतिपाद्य की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। उद्दीपन विभाव में देश काल के भेद से हेरफेर किया जा सकता है, पर रसा भी व्यक्ति का आवश्यक अंग होने के कारण आलंबर और उद्दीपन दोनों प्रकार के विभाव को छोड़ा नहीं जा सकता। रत्नश्री में मधुपान कुमारोदय पर्वत आदि के वर्णन को संभव होने पर छोड़ा जा सकने योग्य बताया है। सर्गों में कथा का विभाजन यदि न भी किया जाए तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु काव्य की भित्ति के लिए आवश्यक अंगों का उपादान तो कवि को करना ही पड़ेगा। उनके स्थूल रूप में परिवर्तन कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार करता ही है।